वहां नदियां हरदम पानी से भरी रहनी चाहिए। राम के वचनों को सुनकर के इंद्र ने कहा कि वाह महाराज, बड़ा विचित्र वरदान मांगा है। मैंने आज तक कभी झूठ बात कही नहीं है, अतः मैं आपको ये बोलता हूं कि सारे के सारे बानर अभी जीवित हो जाएंगे, सब रीत जीवित हो जाएंगे, और इनकी किसी की पूंछ कटी हुई है तो किसी की भुजा कटी हुई है तो किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के पैर में चोट आई हुई है, तो सब अपने अपनी जगह से संतुष्ट हो जाएंगे। समुत्थास्यन्ति हरये सुप्ता निद्रा क्षये यथा। जिस प्रकार से कोई आदमी सोता है उठता है तो सोकर के उठने के समान ये सारे के सारे बानर आपको दिखाई देंगे। सर्वे एव समेष्यन्ति संयुक्ता परया मुदा। ये भी अपने भाई बंधुओं के साथ बड़े प्रेम से मिलेंगे और ये भी आपसे प्रेम में मिलकर के, और अकाले पुष्प सबला फलवंतश्च पादपा भविष्यन्ति महेश्वास नद्यश्च सलिलायुता। तो इन सब के लिए अकाल में फल पुष्प लग जाएंगे। अकाल माने बिना समय के, बिना समय के वृक्षों में फल पुष्प लग जाएगा और बिना समय की नदियां पानी से भरी रहेंगी। ऐसा कह करके, और भाई वहां पर बड़ी विचित्र बात हुई कि इंद्र ने वहां पर ऐसी अमृत की वर्षा करवा दी, जितने बानर मरे हुए थे सब बानर जी गए और खड़े होते कि लाओ लाओ पर्वत शिखर लाओ, रावण को मारते। कहां रावण है? अरे भाई ध्यान रखो, क्या हो गया? थोड़ी देर हमको नींद आ गई थी, हम सो गए थे, तो हमको नींद आ गई, हम सो गए, पता नहीं चला, बताओ कहां। अरे सब शांति शांति है, रावण भी मर गया, सब मर गए, तुम सो गए थे तो अब हमारी नींद उठ गई। तो किसी को ये पता नहीं चला कि भाई ये रावण के शस्त्र से मरे हुए थे और राम जी ने अमृत से जिलाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। उस समय में भाई इंद्र ने कहा कि हे राम, अब आप अयोध्या जाइए और समस्त बंदरों को अपने 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 स्थानों पर भेज दीजिए, और सीता को आप अयोध्या ले जाकर भरत से मिलिए, शत्रुघ्न से जाकर मिलिए, और फिर वहां आप अपना अभिषेक कराइए, और फिर लक्ष्मण के साथ आप सब लोकों में घूम घूम करके आइए और देखिए कि कौन से लोक में क्या हो रहा है, कौन से लोक में क्या हो रहा है। अभिवाद्य ज काकुस्त सर्वांस्तान त्रिदशोत्तमान। श्रेष्ठ श्रेष्ठ उन सब देवताओं को उन्होंने प्रणाम किया, और भगवान ने प्रणाम करने के बाद में अब जो है वहां पर इंद्रादि देवता सब अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान को प्रणाम करने के बाद सब चले गए। लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने, लक्ष्मण अब देखो रात्रि हो गई और सुबह अपने चलने का विचार है, अच्छी बात है, तो वे रात्रि में वहीं पर विश्राम के लिए बैठ गए। अब ये लोग रात भर आपस में बानर लोग चर्चा करते रहे, राम जी की चर्चा करते रहे। देखो जब बहुत खुशी होती है ना, तब रातों रात लोग जगते रहते हैं, रातों रातों जगते रहते हैं खुशी के मारे, और जब बहुत बड़ा गम होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, तब भी आदमी रात भर जगता है। तो बानरों के लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। प्रातःकाल हुआ, राम जी महाराज के सामने विभीषण आया, और विभीषण ने कहा कि हे राम, ये शुभ प्रातः है, प्रातःकाल बड़ा मांगलिक हुआ है, क्योंकि लंका में आने के बाद आज ही आप सोए हो, इससे पहले आपको नींद नहीं आई है। अब आप स्नान कीजिए, मैं आपको उत्तम वस्त्र लाकर देता हूं, उत्तम वस्त्र पहनिए, अपने शरीर में अलंकार लगाइए, शरीर पर माला धारण कीजिए, क्योंकि जिन पिताजी ने आपको वनवास के लिए कहा था, उन्हीं पिताजी ने आकर आपको कह दिया कि आपकी वनवास की अवधि पूरी हो गई, इसलिए अब आपको हमारे यहाँ कोई आभूषण लेने में, आभूषण पहनने में, हमारे महलों में चलने में आप कोई संकोच नहीं रहा। उपस्थिता स्वाम विधिवत स्नापय शांति राघव, ऐसे ऐसे नौकरों को भेज दूंगा कि आप स्वयं ही खुद स्नान करते थे, वो आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, हमारे नौकर चाकर आपको स्नान करा देंगे। विभीषण की बात सुनकर के राम जी महाराज कहने लगे, विभीषण हमारे ये बंदर कितने दिनों में स्नान करेंगे तुझे पता है? ये बंदर कितने दिनों के स्नान करेंगे कुछ पता नहीं है, इन बंदरों के स्नान की व्यवस्था करो भाई, मेरे स्नान की व्यवस्था क्या करते हो? सतुताम्यति धर्मात्मा मम हेतु सुखोचित है। देखो मैं, मुझे तो एक बड़ी चिंता सता रही है, मेरे लिए बेचारा वो भरत अयोध्या में बैठा हुआ बहुत शोक कर रहा है, वो मेरे समान बड़ा सत्य प्रतिज्ञ है, सुकुमार है, मेरे अंदर चित्र लगाया हुआ है, इसलिए उस भाई भरत से मिले बिना तुम्हारे ये सोने के घड़ों से नहाना और अच्छे कपड़े पहनना और ये तरह तरह की रत्नों की माला धारण करना सब व्यर्थ मालूम देता है। पहले मैं भाई भरत से मिलूंगा, ऐसा कोई काम करो भाई जिससे हम जल्दी से भरत के पास पहुंच जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? मैं तो चाहता हूं कि आज का आज भरत के पास पहुंच जाऊं। आज के दिन यदि भरत के पास नहीं पहुंचा तो कल के दिन तो भरत मुझे उपलब्ध होगा कि नहीं होगा बड़ा संदेह है। विभीषण ने कहा महाराज आज पहुंचा दूंगा। आज विभीषण आज कैसे पहुंचाओगे भाई? क्या साधन है तुम्हारे पास? कि मेरे पास पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान का रावण ने हरण कर लिया था, तब से पुष्पक विमान लंका में है। इस पुष्पक विमान के अंदर बैठिए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि रावण ने पुष्पक विमान आपके लिए ही रखा था तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों नहीं है कि पुष्पक विमान आप जैसे सत्पुरुषों के महापुरुषों के बैठने के योग्य है? ये मेघ के समान काले वर्ण वाला विमान, इसमें आप विराजमान होइए। जिस मार्ग से आप अयोध्या जाना चाहते हैं ये पुष्प विमान आपको उसी मार्ग से ले चलेगा। इसलिए जाने आने की चिंता मत करो। और लक्ष्मण के साथ सीता के साथ आप यही निवास करो। राम जी महाराज ने प्रेम युक्त बात सुनी और इस प्रेम युक्त बात सुनने के पश्चात वो और कुछ कहना चाहते परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और बड़े प्रेम से सौहार्द से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने छाती से लगाया। भगवान श्री राम कई देर तक आंसू बहाते रहे। भगवान श्री राम उस समय में बड़े प्रसन्न हो गए। अहम तो यज्ञ अनुग्राही हूं। विभीषण जी महाराज ने कहा कि महाराज ये जो कुबेर का पुष्पक विमान है इसके अंदर आप विराजमान हो जाएंगे तो आपको जहां जाना जब जाना जिस समय में जाना सब प्रकार से ये आपको वहां पहुंचा देगा। राम जी ने कहा तो भाई तुमने तो हमारा बहुत अच्छा ये बड़ा भारी समस्या का जो मामला था ये सलटा दिया, बड़ा अच्छा किया। तो महाराज एक बात कीजिए, वस्तावधि है प्राज्ञ, एक काम कीजिए मैं भी बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। आपके मन में भी लंका के प्रति भावना है कि मैं बहुत कष्ट पाया, आप थोड़ा सा यहाँ रहिए, आप लक्ष्मण सीता सब हमारे महलों में रहिए, क्योंकि इतने जल्दी आप क्यों जाओ, थोड़े दिन आप रह करके फिर जाओ बड़ा अच्छा रहेगा। राम जी ने कहा कि देखो तुमने रोकने की जो भावना बनाई है प्रेम से जो कह दिया है वो कहना होने के बराबर हो गया, संसार में ऐसे मित्र कहां मिलते हैं विभीषण, जो कहते हैं कि नहीं थोड़े दिन आप यहीं रहो, थोड़े दिन यहीं रहो। तुम्हारे चेष्टाओं से, तुम्हारे सौहार्द से, तुम्हारे साचिव्य से मैंने ज्ञान कर लिया कि तुम हमारे अनन्य मित्र हो। नकल वेतन न कुरियाम, लेकिन जो तुम कहते हो कि हमारे यहां चार पांच दिन ठहर जाओ, ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन बार बार भरत की ओर दौड़ रहा है। मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं, क्योंकि ये भरत मेरे पास चित्रकूट में आया था। चित्रकूट में आकर मुझसे सिर पटक पटक करके याचना करने लगा कि आपको अयोध्या चलना पड़ेगा। सुनो विभीषण, यहां तक कह दिया आप नहीं चलोगे तो मैं तो आपके सामने अनशन करके मर जाऊंगा, भूखा प्यासा रह करके मर जाऊंगा। अब तुम ही बताओ कि जो भरत इस प्रकार से भूखा प्यासा होकर के मरने की बात कह चुका था, उसको मैंने पूरी सांत्वना दी थी और उसने कहा कि 14 वर्ष इधर पुराओ उधर आ पाओ तब बात है, अतः तुम अपने पुष्पक विमान को लेकर आओ भाई, उस पुष्पक विमान में हम बैठ करके जाना चाहते हैं। राक्षस राज विभीषण ने यह बात सुनी तो भाई सूर्य के समान चमकीला वो विमान था, वो विमान लाकर के उपस्थित कर दिया और कहने लगा कि महाराज ये विमान आपके लिए उपस्थित है, इसके अंदर कूटागार है, माने बहुत छिपे हुए घर तहखाने हैं। देखो आदमी बैठा रहे पता नहीं चले, लेकिन वहीं पर चाबी से उसका खोखा खोल ले, जिसमें कई शस्त्र रखे जाए, ऊपर से वापस बंद कर दिया, एक जैसा पाटिया दिखता है, कुछ भी नहीं मानो, ऐसे उसमें कूटागार है, चांदी का बना हुआ है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब कोई इसको देख नहीं सकता है, और सफेद सफेद झंडियां इस पर लगी हुई हैं। और इसमें कई ऐसी मधुर मधुर बजने वाली घंटियां लगी हुई हैं, इसमें बड़े बड़े घंटे भी लगे हुए हैं, इसकी आवाज बहुत मधुर आती है, और जगह जगह इसमें मोतियों बरसाने की जगह है, जहां से हम लोग कई बार मोती बरसाते हैं, रावण भी मोती बरसाता था, ऐसे मोती रखने की जगह भी है। इसमें बड़े बड़े पहलवान लोग बैठते हैं और उपस्थितम अनाधृष्यम, जब इस पुष्पक विमान में कोई बैठ जाता है तो उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पुष्पक विमान खुद ही उसको बल देता रहता है। आप यहां पधारी गए हैं तो मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि हे राम, आप इस पुष्पक विमान से पधारिए और आज के आज आप भरत से मिलिए। शीघ्रगामी मन के समान गति वाला ये पुष्पक विमान, इसको देख करके राम जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ओहो, ऐसा तुम्हारे पास विमान है कि हाँ, ये कामक है, कामक मारे तुम्हारी जैसी कामना है वैसा ही ये ढांचा है। तत्पुष्पकम कामगमम विमानम उपस्थितम भूधर सन्निकाशम दृष्ट्वा तदा विस्मय मा जगाम। भगवान को बड़ा विस्मय हुआ कि ओहो, कैसा ही तुम्हारा पुष्पक विमान, चाहे जहां चला जाए, चाहे जितने आदमी बैठ जाए, और सब प्रकार से बड़ा श्रेष्ठ है। तो राम जी ने कहा कि भाई जब यही बात है तो पुष्पक विमान में हम बैठते हैं। तो राम जी महाराज पुष्पक विमान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसमें बैठने से लगे, तो विभीषण ने कहा महाराज कोई थोड़ी और सेवा मुझे बताओ। तो राम जी महाराज ने विभीषण को देख करके कहा कि देखो, मेरे मन में आई थी और तुमने पूछ लिया, इसलिए बड़ा अच्छा किया। देखो ये जितने बंदर हैं बेचारे, इन बंदरों ने हमारे लिए कितना परिश्रम उठाया है, इसलिए तुम्हारे पास तो खूब रत्न है, तुम्हारे पास खूब सोने की मोहरे हैं, तुम लाओ रत्न लाओ मोहरे लाओ रथ लाओ घोड़े लाओ और उनके ऊपर बैठाओ और इनको जो है खूब रत्नों से विदा करो। हे विभीषण क्या बताऊं, लंका तुमने जीती है, इन बांदरों ने तुम्हारे लिए प्राण त्यागा है तब जाकर के और तुम लंका जीते हो। इन्होंने अपनी तरफ से प्राण लगा दिए थे, इनको खूब बड़ा धन मिल गया और खूब बड़ा इनको मान मिल गया, तब भी ये राजी होने वाले नहीं। ये तो राजी मेरे कारण से तुमको राज्य देने में हुए हैं, इसलिए भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृत्ता हरियूथपा। देखो तुम कृतज्ञ हो, इन लोगों के मन में एक भावना आएगी, इन लोगों के मन में ही नहीं आज सदा के लिए तुम्हारे सैनिक लोग भी समझेंगे कि हमारे राजा ऐसे हैं जो कि काम करने वाले के काम की कीमत समझते हैं और वे बड़े उदार हैं, वो कोई संग्रह नहीं करते हैं, वे बड़े दयालु हैं और संग्रह भी करते हैं तो वो त्याग करने के लिए संग्रह करते हैं। इस प्रकार से आपकी बड़ी महिमा गाएंगे, लाओ और इन बंदरों को खूब रत्न वगैरह सामग्री दे। विभीषण बड़ा प्रसन्न हुआ और तत्काल आज्ञा देकर वहां पर बड़े बड़े संदूकें मंगाई गईं और वहां उन बंदरों को खूब जो है रत्न दिया गया, सबको संतुष्ट किया। सबको संतुष्ट करने के बाद राम जी महाराज अब विमान के अंदर जाकर विराजमान हो गए और बड़े संकोच के साथ सीता भी जाकर उसमें विराजमान हो गई और फिर लक्ष्मण जी भी उनकी सेवा में उस पुष्पक विमान में जाकर विराजमान हुई। भगवान ने विभीषण को भी देखा, भगवान ने सुग्रीव को देखा, इन दोनों की तरफ विशेषता से देखते हुए कहा कि हे बांदरों, एक मित्र के लिए जो आप लोगों को करना चाहिए वो काम आपने करके दिखाया है, अब मैं अयोध्या जाना चाहता हूं और मैं आप लोगों को ये आज्ञा देता हूं कि अपनी सेना जहां भी जाए स्वतंत्रता से चली जाए, कोई बंधन में नहीं है। अब सेना, अब राजा की आज्ञा का कोई बंधन नहीं रहा। यत्तु कार्यम वयस्येन स्निग्नेद च हितेन च। अरे सुग्रीव, जब तुम्हारी तरफ मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में आता है कि तुमने जिस स्नेह के साथ, जिस मित्रता के साथ और जिस उत्साह के साथ प्राणों की बाजी लगा करके मेरा काम किया है, हे सुग्रीव, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूं। सुग्रीव, तुम्हारे मन में एक ही बात थी कि मैं कहीं अधर्म के कारण से गिर न जाऊं, तुम अधर्म भीरू थे, अतएव तुमने काम बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे साथ मित्रता निभाई। अब तुम किष्किंधा जाओ और अपने सेना के साथ वहां तुम रहो। ये लंका का राज्य हमने अब विभीषण को दे दिया है, किष्किंधा की और लंका की सदा के लिए प्रगाढ़ मैत्री हो गई है। अच्छा हुआ सुग्रीव, तुम्हारे तो एक मित्र और हो गया। और विभीषण देखो, तुम भी अपने राज्य में रहो। अब देवताओं के आंखों के अंदर लंका कभी भी किरकिरी नहीं होगी, आंख के अंदर थोड़ी सी भी मिट्टी होती है रड़कती रहती है, ऐसे देवताओं की आंख में ये लंका सदाई किरकिरी बनी हुई थी, उनको लंका स्वाद ही नहीं थी, लेकिन आज वे लंका को किस प्रेम से देख रहे हैं। देवताओं के मन में अब कभी नहीं आएगा कि हम लंका को जीते। मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, मेरे पिता की राजधानी है, मेरा वचन भी पूरा हो गया है और मेरा भाई भरत मुझे बहुत याद करता है, उस भरत की याद के कारण से मैं बहुत जल्दी भरत के पास पहुंचना चाहता हूं। उस समय सुग्रीव, विभीषण और दूसरे बंदर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे राम, एक हमारे मन में थोड़ी बात आई है। क्या ही भाई? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। हम आपके वहां पर वनों में, उपवनों में भटकेंगे, हम वहां के नदियों का जल पी लेंगे, हम आपको वहां पर किसी प्रकार से कष्ट नहीं देंगे, हम आपका वहां दर्शन करेंगे, हम माता कौशल्या के चरणों में शीश झुकाएंगे, और जो भरत जिसकी भरत की याद में आप सब काम हम सबको छोड़ करके आप भरत की तरफ जा रहे हो, उस आपके छोटे भाई भरत को हम प्रणाम करेंगे, हमको आप आज्ञा दीजिए। ये बात सुनकर भगवान इतने आनंद मग्न हो गए। भगवान ने कहा सुग्रीव सहित विभीषण सहित सब बंदरों से कहा कि अरे बंदरों, रावण को मार करके उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज आपको अयोध्या ले जाने में खुशी हो रही है। तुमने बहुत सुंदर बात कही, प्रियात प्रियतरम लब्ध है, जो मेरा प्रिय था उससे भी प्रियतर बात तुमने हमको कह दी। ओहो, मित्र होते हैं तो यही ऐसे ही होते हैं। आओ तुम चलो, सब बंदर इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, जल्दी करो। विभीषण तुम भी आ जाओ। विभीषण तुम्हारे खास खास मंत्री लोग हैं, विश्वास पात्र उन राक्षसों को भी ले लो, क्योंकि पुष्पक विमान तो ऐसा है कि इसमें चाहे जितने बैठ जाओ, कोई यहाँ पर सीट के लिए लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं कि मैं आगे बैठूं मैं पीछे बैठूं, कोई धक्का नहीं, कोई मुक्का नहीं, और कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं, कोई इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं, और कोई इसमें हाथ झंडी लाना नहीं कि भाई साहब अब इसमें जगह नहीं, ऐसी बात भी नहीं। खूब आराम से बैठो, जितने बैठ जाए उतने बैठ जाओ। अब सब उसमें आराम से बैठ रहे हैं। आराम से बैठने के बाद संकल्प किया कि ये उड़ना चाहिए, जितने वो पुष्प विमान आकाश में उड़ता चला गया। आकाश में उड़ता जा रहा है, सब बानर बड़े हर्षित हो रहे हैं, और बानर लोग यूं यूं देखते हैं आकाश में लंका को, पुष्प विमान को, और वो बंदर उछल भी रहे, आनंदित हो रहे हैं, बड़ा उनको आनंद हो रहा है। यथा सुखम असंबाधम दिव्ये तस्मिन उपाविशन, बड़ा दिव्य था उसमें वो, बड़े आनंदित हो रहे हैं। उस विमान में जिसके आगे हंस का स्वरूप था, वो जब आकाश में उड़ा तो राम जी ने सब तरफ दृष्टि दौड़ाते हुए कहा, देखो सीते, ये देखो त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई इस लंका को देखो, तुम तो एक अशोक वाटिका में थी, इस लंका को देखो कैसी सुंदर बसी हुई लंका है। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसको बनाया था और कुबेर के लिए बना करके दी गई थी, कुबेर यहां रहता था, परंतु रावण ने अपनी तपस्या के बल से कुबेर को हराकर और ये लंका अपने अपने कब्जे में कर ली थी। कुबेर ने भी पहले राक्षसों से अपने हाथ में ले ली थी और फिर वापस सुमाली आदि के कहने से रावण ने कुबेर के साथ युद्ध करके अपने पास में रख ली थी। ये देखो यहां युद्ध हुआ था, ये देखो खून मांस पड़ा हुआ दिखता है, यहां युद्ध हुआ था, यहां राक्षस लोग मारे गए थे, खूब बंदर भी मारे गए थे, ये देखो यहां रावण जो है मारा गया था, यहां कुंभकर्ण को मारा था, यहां प्रहस्त को मारा था, यहां धूम्राक्ष को मारा था, और धूम्राक्ष को हमारे हनुमान ने मारा था। सीता जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी ने सिर नीचा कर दिया। और देखो यहां सुसेन ने विद्युत माली को मारा था, यहां देखो ओहो क्या बताएं, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, यहां देखो अंगद ने विकट नाम के राक्षस को मारा था, ये जो विरूपाक्ष महोदर महापार्श अकंपन नाम के बड़े बड़े जो है सेनापति थे, इनको भी हमारे बंदरों ने मार गिराया था। त्रिशरा अतिकाय देवांतक नरांतक युद्धोन्मत्त मत निकुंभ कुंभ वज्रदंष्ट दंष्ट मकराक्ष अकंपन शोणिताक्ष यूपाक्ष प्रजंग और विद्युज्जीव यज्ञजीव सुप्तग्न सूर्य शत्रु ब्रह्म शत्रु इत्यादि इत्यादि जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ उनके राक्षस थे, ये राक्षस भी यही मारे गए थे। ये देखो ये वो स्थल है जहां मंदोदरी ने सीता के लिए बड़ा विलाप किया था, उसके विलाप को देखकर तो हमारी छाती दहल गई थी। ये देखो ये समुद्र रहा, इस समुद्र को हम पार गए थे, ये देखो तुम्हारे लिए यहां आने में
हमको ये कितना बड़ा पुल बनाना पड़ा, ये देखो पुल बनाया गया, और समुद्र के इस किनारे कैसे देखो कितना अपार ये समुद्र है, उसके ऊपर कैसा ये पुल बना हुआ है। देखो सीते, इसी समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत रहता है, वो मैनाक पर्वत हमारे ही पूर्वजों के द्वारा यहां धारित किया हुआ है, क्योंकि सागर हमारा ही तो पूर्वज है। एक बार ये मैनाक पर्वत जब हनुमान तुम्हारी खोज के लिए आए थे, तब इसने अंदर से प्रकट होकर हनुमान को विश्राम स्थली दी, पर हनुमान विश्राम नहीं किए। ओहो, ये देखो यहाँ जरूर देखो, यहाँ हम तुम्हारे लिए बैठ करके और महादेव शंकर की आराधना किए थे, महादेव शंकर को हमने प्रसन्न किया था। और देखो ये सेतु बंद कहलाता है, यहाँ से लेकर उस तक पूरा का पूरा सेतु है, ये सेतु समुद्र को बांधता है, इसलिए सेतु बंद कहलाता है। इसका कोई दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखो ये वन देखो, ये उपवन देखो, ये महेंद्र पर्वत, ये कितना विशाल जंगल, ये देखो ये किष्कंधा आई, ये देखो किष्कंधा नगरी के इस पास में ये देखो जंगल है, और इन वृक्षों की ओट में खड़े होकर मैंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को यहां मारा था। सीता ने किष्कंधा को देखते ही कहा कि हे राम, एक मेरी विनती है, बोलो प्रिय क्या बात है। हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये जितने भी बंदर हैं, ये बंदर अपनी अपनी भारियाओं को लेकर, अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर यदि ये भी अयोध्या चले तो उन लोगों के मन में भी बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने कहा, अरे सीते तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही, क्यों नहीं जरूर जरूर। सब बंदरों को कह दिया कि आओ भाई, तुम अपने अपनी बंदरियों को ले आओ और चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, चलो गंतुम इच्छे सह अयोध्या राजधानी पितुर मम, मेरी पिता की राजधानी में आ जाओ, आ जाओ। सुग्रीव को कहा, सब बंदरों को कहा, सबको कहा आ जाओ। राम जी की बात सुनकर के वो बंदर लपक लपक करके गए अपने अपने जगहों पर, और जगहों पर जाकर के और कहा कि चलो चलो तुमको अयोध्या दिखाएं, यहाँ जंगलों में फिरती रहती हो, और हम तो देखो लंका गए थे, हमने तो पुष्प विमान देखा, तुम भी देखो। तो कहा कि अरे आपने तो हमारा जीवन सफल कर दिया, उन राम जी के हमको दर्शन हो जाएंगे, हमने तो दर्शन भी नहीं किए। अरे दर्शन क्या राम जी का, अब तो राम जी का सारा परिवार का ही दर्शन करेंगे। तो सब अपने अपने तैयारी में जुटी हुई है। उधर अंतपुर में जाकर सुग्रीव ने अपनी पत्नियों से, तारा आदि से, सबसे कहा, देखो प्रिय ऐसा मौका फिर बार बार मिलने वाला नहीं है, न तो कोई बार बार राम जी आएंगे, न कोई बार बार रावण मरेगा, और न कोई बार बार पुष्पक विमान के हिंडे उंडे मिलेंगे। आ जाओ तुम, आ जाओ, आ जाओ। राघवेण अभ्यनुज्ञाता, और भगवान राम ने अपने को आज्ञा दे दी है, चलो चलो। सीता जी के कहने से किया उन्होंने, अच्छा चलो अयोध्या दर्शी श्याम, हम अयोध्या के दर्शन कराएंगे आपको। तो भाई इस बात से सबके मन में बड़ी खुशी हुई। तो तारा ने सब बंदरियों को कहा, जितनी बंदरियां हैं, देखो अब अपने एक बहुत सभ्य समाज में जा रहे हैं, वहां पर देखो अनावश्यक चंचलता मत करना, वहां जाओ तो भाई जैसा आदेश दें वैसा ही करना, और वहां जावे तो अपने राम जी की माताओं को प्रणाम करना, अयोध्या के अंदर जाओ तो बहुत जो है शालीनता से पूर्ववासियों से भी मिलो, सबके दर्शन करो, बड़ी शालीनता से रहना। तो वो बंदरियां सब नैपथ्य विधि पूर्वम तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणम सब गई, और सब ने अपना जैसा भी श्रृंगार था श्रृंगार किया, और वो फुदकती फुदकती आई, आकर के पुष्प विमान में बैठ गई और पूछने लगी सीता जी की, ये सीता जी है। तो सीता जी के सामने बैठ गई और सीता जी का दर्शन करने लगी। सीता जी को देख देख के खूब राजी हुई। अब देखो भाई माताएं बहने तो माताएं बहनों के पास ही बैठे, तो सीता जी को उन्होंने खूब घेर लिया, सीता जी के दर्शन करें, बहुत आनंद में डूब गई वो। अब वो पुष्प विमान फिर वापिस चलने लगा, तो ऊपर चलते 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 राम जी महाराज ने कहा, देखो सीते, ये देखो, ये इतना विशाल पर्वत दिख रहा है, ये ऋषिमुख पर्वत है। ये ऋषिमुख पर्वत धातुओं वाला, मतलब अनेक प्रकार के इसमें धातुएं हैं, ऐसे ऐसे शिखर हैं, कहीं सोना है तो कहीं चांदी है, कहीं पीतल है, कहीं तांबा है, ये सब धातुएं ऋषिमुख पर्वत पर मिलती हैं। ये ऋषिमुख पर्वत है सीते, जहां पर हमारी और शिवग्रीव की मित्रता हुई थी। और सीते, तुम रावण के अंक में थी, गोद में थी, और तुमने यहाँ पर जो वो फेंके थे अपने आभूषण, वो इसी पर्वत पर फेंके थे। तो सीता यूं गौर करके देखे, अच्छा यही वो जगह है। समयश्च कृतः सीते, और मैंने भी यहाँ जब बाली को मारा था, यही ऋषिमुख पर्वत पर मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं बाली को मार के रहूंगा। और देखो ये पंपा सरोवर दिख रहा है, कितना निर्मल जल है। तुम्हारे बिना मैं इस पंपा सरोवर के पास बहुत रोया तड़फाया, कितना सुंदर ये पंपा सरोवर,